તારીખ 29/4/1988 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સરણ નંબર 51 મૂળ કેસેટમાં ખૂબ જ હમિંગ છે.
ज्ञानवान निश्चय से कहता है कि ज्ञान ही हमारा रूप है, स्वयं ज्ञान है, स्वयं ही ज्ञेय है और स्वयं ही ज्ञाता है. ऐसा ज्ञान के ज्ञाता का भी जिसमें भेद नहीं, वैसा मात्र ज्ञानमय सत्ता हो अपना स्वरूप है तो निश्चय क्षण. ऐसे आत्मा को के ज्ञान में षड्द्रव्य का प्रतिबिंब आकृति आती है, स्वरूप झलकता है. ये आत्मा का रूप नहीं है निश्चय क्षण. निश्चय से ही आत्मा का ऐसा रूप नहीं है. व्यवहार में से तो कहने में आता है कि हमें सोने पर की अपेक्षा ही इसको व्यवहार कहते हैं. दिखता है तो अपना ज्ञान, अनुभव में आता है तो अपना ज्ञान, लेकिन स्वयं स्वयं में पर की अपेक्षा आई कि पर की आकृति आई, पर दिखाई दे रहा है, पर की झलक है, ऐसा कहना ही व्यवहार है. इसको व्यवहार कहते हैं.
ये
स्वयं ज्ञान है. पर तो इतना ही है, मेरी षड्द्रव्य तो हमारा रूप नहीं है. फिर ये जो प्रश्न है वो तो बना से जाति का नहीं. ये व्यवहार में इसे सत्य कहा है तो क्यों, निश्चय नहीं से ऐसा सत्य कहा है. निश्चय नहीं से ऐसा सत्य कहा है कि ज्ञान तो हमारा रूप है, वो तो निश्चय रूप है. षड्द्रव्य हमारा रूप नहीं, वो निश्चय रूप है. षड्द्रव्य नहीं है वो व्यवहार है. षड्द्रव्य ये नहीं है, ये तो षड्द्रव्य हमारा रूप नहीं, ये निश्चय है. ज्ञान हमारा रूप है वो निश्चय है. अस्ति नास्ति दोनों से वो निश्चय है. लक्ष्य योग के सिवा भी जो ज्ञान है वो ज्ञान में लक्ष्य करना, उसको लक्ष्य ज्ञान संभव नहीं। क्या जिन प्रतिमा व आचार्यों द्वारा रचित जिन शास्त्र में ज्ञान प्राप्ति का निमित्त नहीं है, इस संदर्भ में एक अज्ञानी मनुष्य सत्पुरुष की पहचान कैसे करे, उनके अंतर वाले लक्षण क्या है, कृपया विवेचन द्वारा प्रकाश करें। मार्ग प्राप्ति की सूच प्रत्यक्ष गुरु अथवा सत्पुरुष के बोध बिना मिथ्या दृष्टि को संभव नहीं। जिन मिथ्या दृष्टि को शुभ संस्कार होता है, उसको जिन प्रतिमा व आचार्य द्वारा रचित या किसी ज्ञाने द्वारा रचे, ज्ञाने हो मुनि हो आचार्य हो किसी सत्पुरुष द्वारा रचित जो उत्काल में बोलो, ऐसे शास्त्र जो है उस शास्त्र में ज्ञान प्राप्ति का निमित्त जो है, लेकिन ये संस्कार युक्ति के वो निमित्त नमित नैमितिक संबंधों प्राप्त होता है। जिसको संस्कार नहीं है उनको प्रत्यक्ष योग के बिना मार्ग प्राप्ति की सुध नहीं आते, ऐसा इसमें भेद है। निमित्त निमित्त में भी इसलिए उसको गौण रूप से निमित्त कहा है, जिन प्रतिमा को गौण रूप से निमित्त कहा है तत्वास्तु गौण रूप से और भी निमित्त होते हैं संस्कार जीवन, जैसे नारक के नरक के जीवन को नरक की वेदना है तो संस्कारी जीव है तो वेदना के निमित्त है वेदक स्वभाव को पकड़ लेता है, अनुभूति स्वभाव को ग्रहण कर लेता है, ऐसा बनता है। ऐसे गौण रूप से ये निमित्त है संस्कार, मुख्य रूप से तो प्रत्यक्ष योग ही मार्ग प्राप्ति में निमित्त बनता है। ये वैज्ञानिक मुख्य सत्पुरुष की पहचान कैसे करें, जिसको आत्महित का रास्ता आत्महित का मार्ग जो ढूंढता है उसकी खोज है, उसको ये पता चलता है कि ये मार्ग बताने वाला है बराबर संसार से छूटने का और आत्मयुक्त का परम सत्य का मार्ग दिखाई दे रहा है, तो उनको पता चल जाता है कि ये सही कहता है, क्योंकि उस मार्ग में जो मार्ग है वो उपाय है, तो उपाय का विषय जो है उसमें कितनी बातें मोटी मोटी है, कितनी बातें अनुभव पूर्ण सूक्ष्म अनुभव की बात है, तो वह मार्ग को खोजता है उसमें उस तरह से खोजता है कि मैं अंतर अनुभव में उसको कैसे ग्रहण करूं, इस तरह से जो खोजता है उस तरह से जो कहने वाला उसको मिलता है, ये इस विषय की सूक्ष्मता है। जैसे मनुष्य है उसको मार्ग नहीं मार्ग की सूझ नहीं आती है, खोजता है अंतर होना ही मार्ग का जरूर है, इतनी बात का नहीं मत में भी आती है अंतर होना, बाह्य परिणाम में बाह्य भावों में कहीं भी आत्म साक्षात्कार होने की संभावना नहीं है। एक अंतर्मुख परिणाम में ही आत्म साक्षात्कार होता है। ये बात यहाँ तो अन्य वर्ग में वेदांत में ये बात आती है, लेकिन अंतर्मुख कैसे होना ये बात माने, ये बात माने, ये बात सत्पुरुष के शब्दों में इनकी जो भावात्मक परिस्थिति है इसके अनुभव के साथ इन शब्दों में ये भाव झलकते हैं, इसका ध्वनि आता है और इस पर से जो मोक्ष ऐसे खोजी मोक्ष होता है तो पकड़ते हैं। अच्छा, ऐसे अंतर्मुख होने का सवाल ऐसे ही स्वसंमुख हुआ जाता है कि उनकी पकड़ में वो बात आती है तो वो समझ सकता है कि कहने वाले को इस विषय अनुभव में आया है और ये अपने अनुभूत बात को बता रहा है। ये इस प्रकार के भाव प्रदर्शित करने का ऐसे अनुभूति संपन्न जीव जो ज्ञानी होते हैं कि इनसे ही बनता है, दूसरे से ही बात नहीं बनती। ये जो विशिष्टता, इस विषय की जो विशिष्टता है उसको बराबर समझ करके पकड़ लेता है तो उनको पता चलता है कि वो कैसे है। बाह्य लक्षण में तो कोई खास बात नहीं है, बाह्य लक्षण में कोई इसका पता नहीं चलेगा क्योंकि मोटी मोटी बात तो विद्वानों को, पंडितों को, कईयों को नहीं आते की बात है। अंतर्मुख होना चाहिए, अंतर्मुख होने से ही आपको साक्षात्कार होगा। यहाँ तक की बात करो, अंतर की परिणति का विषय है और इसी के साथ संबंध रखने वाले, भाव के साथ संबंध रखने वाले जो इनकी वाणी है उस वाणी में ये जो आता है ध्वनि आता है इससे वो पकड़ सकते। विशेष सूक्ष्म का ही अनुभव का विशेष होता है हमेशा, इसलिए तो गुरुदेव ये कह देते हैं कि जैसे स्वाद का विषय है, लाल मिर्च और काली मिर्च दोनों का स्वाद तो मिर्च है इसलिए तीखा ही होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग स्वाद है उसको कैसे बता। ऐसे ऐसे ही अनुभव में वो आस्वादन का विषय है इसलिए इसकी कहने की भाषा में मर्यादा होती है। फिर भी ये मर्यादा जो इस विषय से बिल्कुल अनभिज्ञ है, जो अंतर्मुख कभी हुआ ही नहीं और जिस जो इस विषय में बिल्कुल अंधेरे में है उसको ये विषय कहने में और समझने में नहीं है तो कहने में तो आएगा कहाँ से, उन्हें याद करता तो बता भी बता नहीं, सवाल ही नहीं, जिसने देखा ही नहीं तो क्या बताएगा, जिसने देखा है वो बताने की चेष्टा करेगा इसमें जो है ध्वनि आएगा इससे पता चल जाता है कि ये सब पुरुष है और इसका मार्ग है। प्रश्न का ये तात्पर्य हुआ कि जो मुमुक्ष इस विषय की जिज्ञासा में खड़ा है, जिज्ञासा ही इस वक्त के इसके ज्ञान में एक अवकाश पैदा करती है इस विषय को समझने के लिए, योग्यता पैदा करती है। विद्यता को हो या पात्रता को, एक ही बात है।
कर्मकांड अर्थात क्रियाकांड से ज्ञान कांड होता है,
वहाँ सिर्फ बाह्य कर्म नहीं लेना है, ये क्रियाकांड में स्थिरता का कांड है। आत्मा की प्रणति स्वरूप में स्थिर होती है, उपयोग स्वरूप में स्थिर होता है, उसी क्रियाकांड से ज्ञान कांड होता है, अनुभव होता है, ऐसा बात है। वहाँ उप क्रियाकांड नहीं है, ये दत्तवादी की बाह्य क्रिया करते हैं, संयम बाह्य संयम की क्रिया है, वो बात नहीं है। और ज्ञान क्रिया ज्ञान मोक्ष में भी कोई स्वरूप स्थिरता की क्रिया है, स्वरूप का दृढ़ आलम्बन की वो क्रिया है, उसकी किस क्रिया से मोक्ष होता है, दोनों और समान है।
चारित्र से ज्ञान होता है, ऐसा पुण्य हो जाएगा, चारित्र से ज्ञान होता है, ये पुण्य हो जाएगा, उसका क्रिया से ज्ञान होता है।
ऐसा है कि मोक्ष मार्ग में एक गुण का कार्य का उपचार दूसरा गुण के कार्य में लगाने का, प्रथम करने का दबाव है। तो चारित्र से ज्ञान को कहना, चारित्र से श्रद्धान को कहना, चारित्र से पुरुषार्थ को कहना, सुख को कहना, ये भी प्रथम की विवेक्षा चलती है सत्शास्त्रों में। श्रद्धा से ज्ञान को कहना, श्रद्धा से चारित्र को कहना, पुरुषार्थ को कहना, ज्ञान से भी श्रद्धा को कहना, ज्ञान से चारित्र को कहना, इसकी मुख्यता से किसी भी एक गुण की मुख्यता से दूसरे गुण को कहते हैं, ऐसी विवेक्षाएं शास्त्र में चली है। और जिसको स्वरूप समझ में है उसके लिए सभी विवेक्षाएं निर्दोष हैं, इसे कथन में कोई दोष नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ चारित्र की प्रधानता से ज्ञान को बताया, जैसे कि ज्ञान मोक्ष मार्ग में जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे अधिक अधिक निर्मल होता जाता है, ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्मकांड से ज्ञान कांड में क्या कि जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है स्वरूप में वैसे वैसे आत्मा विज्ञान घन होता जाता है। तो स्थिरता के कारण ज्ञान निर्मल हो गया, ज्ञान घनिष्ठ हो गया, ऐसा कहने का होता है। तो कोई दोष है, सब साथ में, आगे पीछे कुछ नहीं है, साथ ही साथ होता है, उसी काल में होता है। जैसे कि जिस काल में सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसी काल में सम्यक ज्ञान होता है, उसी काल में शुद्ध होगी और निर्विकल्प है वो स्वरूप चारित्र है। तीनों एक काल में होते हुए भी कभी ज्ञान से श्रद्धान कहते हैं, कभी श्रद्धान से ज्ञान कहते हैं, कहने में कोई दोष नहीं है। वस्तु व्यवस्था जिसको जैसी है वैसी मालूम है, इनके लिए जो कथन है उस कथन में वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता, कथन की विवेक्षा को भी बदलती है लेकिन वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता, ऐसा होता है। जैसा निश्चित चरण होता है, निश्चित चारित्र होता है, उसी के अनुसार बाह्य क्रिया होती है। ऐसे मुनि दशा का विषय लिया कि मुनि दशा में सातवें सातवें गुणस्थान की शुद्धि रूप निश्चय वितरागी चारित्र का जो परिणाम है उसी के अनुकूल ही, उसी की मर्यादा में ही द्रव्य क्रियाएं रहेगी। मुनि दशा में जो 28 मूल गुण है इसको उल्लंघन करके कोई बाह्य चारित्र होने का होता नहीं। तो चरणानुसार द्रव्यम है, शरण मैंने अंतर चारित्र के अनुसार ये द्रव्य क्रिया है। और ऐसे मुनियों को द्रव्यानुसार चरण जैसी द्रव्य क्रिया है उसी से ये पता चलता है कि इसका अंतर चारित्र कोई ऐसे ही मुनि के योग्य होता है। ऐसा एक अमृत चंद्र आचार्य देव का श्लोक आता है, कवच आता है, प्रवचन छात्र दूसरा प्रश्न है, द्रव्य को परिणामी और अपरिणामी दोनों ही कहने में आता है तो किस प्रकार कृपया स्पष्ट कीजिए। द्रव्य दृष्टि प्रकाश बोर्ड नंबर 27 को परिणाम ही कहते हैं तो वहां प्रमाण का विषय बुद्ध ग्रह है। परिणामी परिणाम परिणामी एग्जैक्ट कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो आता है कि द्रव्य को परिणामी कहने से क्या अर्जा है, क्या तकलीफ है, कौन सी अर्जा है, ऐसा प्रश्न लिखा है। द्रव्य को परिणामी और अपरिणामी दोनों ही कहने में आता है किस प्रकार, सतह प्रश्न वाला प्रश्न नहीं है,
इसके उत्तर से ही प्रश्न होता है, जिन्होंने उत्तर दिया ना उससे ये प्रश्न होता है। उत्तर
परिणाम परिणामी कहने में थोड़ा अंतर फर्क है, परिणाम से परिणाम को बताने में परिणाम का लक्ष्य होता है, परिणाम का लक्ष्य नहीं कराने के हेतु से परिणाम परिणामी नहीं परंतु अपरिणामी और परिणाम ऐसा कहो, ये निरीक्षारक है, ये निरीक्षा थोड़ी अलग होती है। तो इसमें क्या कहते हैं प्रश्नकार ने प्रश्न इस अभिप्राय से उठाया है कि आप द्रव्य को अपरिणामी कहते हैं लेकिन हम परिणामी कहें तो क्या तकलीफ है, इसको क्या मानना है, कौन से अर्थ है, ये प्रश्न का भाग है। तो इस एंगल से टू दी पॉइंट यहाँ उत्तर दिया है कि परिणाम के मुख्यता से परिणामी द्रव्य को बताएंगे क्योंकि परिणाम स्वभाव वाला है, इसलिए उसको अपरिणामी को भी परिणामी कह सकते हैं। त्रिकाली प्रयोग का दो नाम है, एक परिणामी भी इसका नाम है और परिणामी भी इसका नाम है। और आप कहते हैं तो अपरिणामी है, अपरिणामी है, अपरिणामी है, वास्तव में अपरिणामी की बात आती है और परिणाम स्वभाव तो है इसका, परिणाम भी करता है, भले ही परिणाम इसमें नहीं है लेकिन परिणाम स्वभाव तो है कि नहीं, जब तो परिणाम होता है तो परिणामी क्यों नहीं कहते। तो परिणामी कहने में परिणाम पर लक्ष्य जाता है और अपरिणामी कहने में परिणाम पर लक्ष्य नहीं जाता। तो अनादि सब अनादि का पर्याय बुद्धि वाले को तो परिणाम पर लक्ष्य टूटा हुआ है, टूट गया है, इसको बदलने के हिसाब से अपरिणामी शब्द से प्रयोग करते हैं उसको बताने के लिए, परिणामी शब्द का प्रयोग नहीं करते। ये प्रश्न का सही उत्तर है। और इस प्रश्न में द्रव्य को परिणामी और अपरिणामी दोनों ही कहने में आता है, सही है दोनों ही कहने में आता है क्योंकि दोनों प्रकार का इसका स्वभाव है, इसलिए दोनों ही कहने में आता है। तो परिणाम स्वभाव वाला होने से परिणामी कहते हैं और खुद ही अपरिणामन स्वरूप रहता है इसलिए उसको अपरिणामी कहते हैं। ये जो त्रिकाली द्रव्य सामान्य है एक समय के परिणाम से शून्य है, एक समय के परिणाम के अभाव स्वभाव है और इससे रहित है इसलिए उसको अपरिणामी कहते हैं। तो एक ही द्रव्य को परिणामी भी कह सकते हैं, अपरिणामी भी कह सकते हैं, दोनों ऐसे दोनों विवेचनाएं ठीक है।
फिर पहले क्या मानना है इसमें?
मेरे
छंद दोनों ठीक है, मेरे छंद दोनों ठीक है, लेकिन मैं पहले पीछे का भेद है कि दोनों साथ में चलते हैं।
स्वरूप तो एक है, स्वरूप तो नहीं है, ये भी स्वरूप की दो विशेषताएं हैं। किसके लिए क्या अच्छा है वो दूसरी बात होगी, ज्ञानी के लिए तो कहीं से भी हो, अज्ञानी के लिए कौन सी बात अच्छी है वो दूसरी बात होगी। तो उत्तर दिया है अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए तो दोनों में दोनों कहने में आता है, तो प्रश्न में पूछा है तो दोनों कहने में आता है, किस प्रकार दोनों कहने में आता है ये प्रश्न का उत्तर है। तो दोनों प्रकार के स्वभाव है, परिणामीपणा भी इसका स्वभाव है, एक परिणामीपणा भी इसका स्वभाव है, ये दोनों तरह से दोनों प्रकार से कहने में आता है। मैंने एक आदमी में पुत्रत्व भी है और पितृत्व भी है, दोनों होने से कहीं से भी कह सकते हैं, कहने में कोई दोष नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाश में आया है कि जरूरी उन्हें इस प्रकार का उपदेश भी कर सकता है जिससे अन्य जीव संगठित की प्राप्ति करने दृष्टांत भी दिया है कि जिस प्रकार कोई पुरुष त्रिकाश्वास धारण करके अन्य जीवों को कामरूप होने में निमित्त हो सकता है, तो किस प्रकार कहा है और क्या कहा है तो क्या समझाइए। उसमें ऐसा होता है कि मृत बादान की जो चौंगी है उसमें अशुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान, शुद्ध उपादान शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान अशुद्ध निमित्त, अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान अशुद्ध चौभंगी है। तो जहां ये बात चली है उसमें किस भाग में ये बात आ रही कि उपादान तो निमित्त तो अशुद्ध है और उपादान शुद्ध है, इस भाग में ये बात आ रही। तो श्रीमद रामचंद्र जी ने इस विषय पर खुलासा करते हुए कहा कि कहीं ऐसा भी बनता है, योग संयोग से ऐसा बनता है कभी कि कहने वाला जो है वो तो इस विषय से अनभिज्ञ होता है और कहने का प्रयास करता है तो इसी विषय का जो जानता है या इसी विषय की योग्यता वाला है उसको ये लगता है कि ये सही नहीं कह रहा है, सही कुछ बात ऐसी है ऐसी ऐसा क्या पकड़ता है वो कि सही बात वो नहीं कह पाता, वो बात सही नहीं कहता, सही कहने का प्रयास करता है लेकिन सही कह ही नहीं सकता है, सही बात को कुछ इस तरह से ऐसे कहते हैं ऐसा करके ये शुद्ध उपादन द्वारा कोई चीज ऐसा होता है। तो यहाँ से इस प्रकार से उसको सही बात पकड़ने में आ जाती है। ऐसी बात तो शास्त्र है, ये क्या क्या बात आएगी देखिए, अभी क्या इसमें सूक्ष्मता है, जिनको प्रतिपादन है पंडित जी का, गोरखनाथ जी का, तो मोक्ष में आया है तो उपदेश भी कर सकता है। तो क्या है कि वो शास्त्र से उपदेश करेगा कि शास्त्र में ऐसी बात नहीं है। तो शास्त्र तो सब शास्त्र है, बात तो सही है, इसका मर्म को इसका रहस्य को वह नहीं पाया है, लेकिन जिसका शुद्ध उपादान है उसको ये ग्रहण समझ में आता है, ऐसी बात है। उसके बाद में वो रहस्य प्रकट नहीं हो सकता है। जिसने जो चीज देखी नहीं, जिसने जो चीज खाई नहीं, आस्वाद नहीं किया, उसी चीज का वो विवरण कैसे करेगा, कैसे बताएगा, कैसे दर्शाएगा? कि ये तो प्रैक्टिकली दिखता है, बन ही नहीं सकता। मैंने जो चीज खाई नहीं, मैं अनजान हूं जिस चीज से, इसका स्वाद मैं कैसे बताऊंगा? हाँ, इसका वर्णन में पढ़ा हो शास्त्र में, जो आम है वो मिट्टी होती है, इसमें भी जो हफूस की क्वालिटी बनती है वो महाराष्ट्र में बनती है ना रत्नागिरी में, वो बहुत बढ़िया होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ऐसा सुना हो पढ़ा हो उससे बहुत को ऐसा बोल सकता है, लेकिन वो उसको दर्शा नहीं सकता, अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकता, उसका अनुभव में आई नहीं वो चीज, पर अनुभव कैसे करना वो भी चीज इसमें नहीं आई है, दोनों का अनुभव है तो उसको नहीं बता सकता। लेकिन शास्त्रकार जो है वो तो ज्ञानी है, जिसने शास्त्र रचे हैं वो तो ज्ञानी है, उसमें इसका कौन आता है, इसमें इसका धने आता है, तो जो शुद्ध उपादान वाले होते हैं उसको पता चल जाता है। ये जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे हैं, सही बात कुछ ऐसी और दूसरी है, और है मैंने दूसरी है, ऐसा हमको पता चल जाता है, ऐसा कभी बनता है ऐसी बात, इसलिए उपचार की बात यहाँ चली है। ज्ञानी धर्मात्मा की भक्ति आराधना वो पूजा आदि प्रवर्तनों के लिए उनके गुणस्थान अनुसार मर्यादा रूप विधान है क्या, ऐसा ही प्रश्न है। एक ज्ञानी धर्मात्मा की भक्ति आराधना वो पूजा आदि प्रवर्तनों के लिए उनके गुणस्थान अनुसार मर्यादा रूप विधान है क्या है। स्वामी कार्तिकेय अनुपुरुषा में इसका विधान है, 326 नंबर की गाथा की टीका में ज्ञानी धर्मात्मा चतुर्थ गुणस्थान व्यक्ति जिसको अविरत समय दृष्टि कहते हैं, इनकी वंदना करना, स्तुति करना, पूजा करना, ऐसी बात नहीं है। छह धारा में ये बात आती है, लेशन संयम पर गुरुनाथ विजय है, आता किसके लिए आता है, लेशन संयम किसके लिए आता है, जिस अविरत समय दृष्टि को बाह्य में कुछ भी संयम नहीं देखता, अंतर संयम तो है, परमार संयम में तो आए हैं लेकिन बाह्य में नहीं दिखता है, इसको सोनाथ मैंने इंद्र भी इसकी पूजा करता है, ये बात सिद्ध होती है। आप कथानुयोग में सम्यक दृष्टि इंद्र चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति तीर्थंकर बाल तीर्थंकर कहते हैं, उपदेश नहीं दे रहे हैं, इसका कोई उपकार नहीं है इस इंद्र पर, है क्या है, नहीं आते हैं इनको अभिषेक करने को ले, पांडु शिला करने का इंद्र की पूजा के बहुत देर है, अभिषेक करना ये भी द्रव्य पूजा है, अर्घ्य चढ़ाना ये भी द्रव्य पूजा है, बंधन करना ये भी द्रव्य पूजा है, स्तुति करना, गुणगान करना ये भी द्रव्य पूजा है, ये द्रव्य पूजा के कोई भेद है। तो हम उसकी पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, सम्यक दृष्टि जब सम्यक दृष्टि की इतनी करते हैं तो मिथ्या दृष्टि के लिए तो अपने आप को समझ लेना ही चाहिए कि अपने लिए तो मंडली भूमि है ही स्वाभाविक अलग। मैं बहुत से विधान हैं इस संबंध में, अभी एक नया प्रकाशन हुआ है हमारे महानगर से, दंसन बोलो धर्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। ये सूत्र है भगवान कुंकुंज स्वामी का अष्टपाहुर में, और वहाँ दर्शन पाहुर की 33 गाथा का भी आधार लिया है कि सम्यक दृष्टि का प्रकरण चतुर्थ स्थान वर्तिका चला है, और अभेदी अर्घ्य शब्द का प्रयोग किया है कुंकुंज स्वामी ने, अर्घ्य दे उसको अर्घ करने में आता है ऐसा वहाँ लिखा है। ऐसे बहुत से आधार, करीब 195 आधार है इस विषय के, ऐसा एक छोटा सा वॉल्यूम अभी रंसन मोलो धम्मो नामक जो प्रकाशन है उसमें बहुत सी बातें समीर दर्शन की महत्ता दर्शाने के लिए आगम आधार से 195 आगम आधार, करीब 55 आगमों ऐसे ये आधार लिए गए हैं। हाँ, एक ही मुद्रा पर इकट्ठे करके स्वाध्याय और समझने के लिए तो आगे ये प्रश्न और बताया है, क्या चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति अविरत समय दृष्टि में भी परमेश्वर वृत्ति होना उचित होगा, यद्यपि उन्होंने फिलहाल उस भूमिका अनुसार चारित्र दोष को विद्यमान है, कृपया स्पष्ट कर मार्गदर्शन करें। ये बात रही अनुभव की, इस विषय को स्पष्ट करने के हेतु एक दृष्टांत लेते हैं कि अगर वास्तविक रूप से हम समुद्र के मध्य में डूबते हैं, चारों दृष्टि करते हैं तो पानी ही पानी नजर आता है, तैरने की सामर्थ्य कितनी, अगर तैरना आता हो तो घंटा दो घंटा चार घंटा छह घंटा बारह घंटा तो मजा होगी, उसका तैर ही नहीं सकता, दो पांच घंटे में तो बहुत गिरने वाला भी थकता है। लेकिन समझो कि जान बचाने के लिए जितनी भी शक्ति है यहाँ पर हो गया, अब थक गया, उसको अपनी मौत नजर आती है, अपनी मौत को देखता है, मृत्यु को देखता है, खत्म बात है, अब तो कोई जीने का आसार नहीं मिलता है, अब तो डूबेंगे ही डूबेंगे। इस हालात में अगर कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर लेके आओ तो और तो कोई दिखता ही नहीं था, पानी पानी दिखता था, न कोई स्टीमर दिखती थी न कोई वाहन दिखता था, लेकिन ऊपर से कोई आ गया हेलीकॉप्टर लेकर गया तो कुर्सी रस्सी से बांध कर नीचे उतार दी कि भैया बैठ जाओ तुम, हमको पता चल गया तो तुम डूब रहे हो, तो इसके लिए वो क्या कहेगा, कौन आया है कि कोई परमेश्वर आया क्या कहेगा है? कोई परमेश्वर आया कि जिन्होंने मुझे डूबते ही बचा लिया, कुछ रिश्ता है जरूर जो आकाश मार्ग से है, और फिर कोई रस्सी बस्सी ऐसी नहीं, कुर्सी बराबर बांध करके छोड़ी मैं बैठ जाऊ, बैठ गया ऊपर आ गया, डर गया पूरा का पूरा, एक सेकंड में तो मृत्यु को देखता था, दूसरी सेकंड में उसने अपने जीवन को देखा। हमने कभी किताब पढ़ी इसमें कहीं मरीजों के दृष्टांत थे तो बड़े अच्छे हुए। इसमें लीवर का कैंसर वाला मरीज था, लीवर का कैंसर हो गया था, कैंसर मैंने मुझे कैंसल डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर मैंने कैंसल। उसी आदमी ने एक प्रयोग किया, प्रयोग किया तो प्रयोग दिखाने वाला जो आया, वो बुलाने वाला जो प्रयोग बताने वाले आया, तो उसने वो प्रयोग कर लिया और बच गया। ये कहानी तो थोड़ी लंबी छोड़ी है, इसको मैं संक्षेप कर देता हूँ। तो उसने इस चिट्ठी में ऐसा लिखा था, ये कोई बनावटी बात नहीं है, वो आदमी टाटा के कैंसर हॉस्पिटल में गया था, टाटा के कैंसर हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया। फिर वहां से डॉक्टर ने बोल दिया कि जो इलाज करना है करवा करने का सारा तो कर लिया है, लेकिन तुम्हारा दर्द है वो तो बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए कोई अभी इलाज नहीं है, तुम घर पे जाओ, भगवान का नाम ले लो, महीना 15 दिन छोटी तुम्हारा तुम्हारी आयु होगी, सोते रहो घर पे, और फिर तुम इसका कोई इस विश्व में तो अभी इलाज नहीं है जहाँ तक हम जानते हैं। मुंबई में इस आदमी ने अपना एड्रेस दिया था, कालबा देवी महावाड़ी या मानवाड़ी करके लोग नंबर दिया था, नाम धाम दिया था, करीब 54 साल के उम्र बताई थी अपनी, मैंने सब पता बताया। उसने शीर्षक अपने पत्र का शीर्षक दिया था कि मैं ही फलाना फलाना हूं, मेरा भूत नहीं है, ऐसा शीर्षक दिया था। वो तो आदमी जब अच्छा हो गया इस प्रयोग से, तो काका के जो प्रकुल देसाई करके उसका नाम तो प्रसिद्ध है डॉक्टर के पास गया, उसके चैम्बर में गया तो उसको देखने लगा, जरा गौर से देखा, आदमी थोड़ा पुष्ट भी हो गया था, शरीर से तगड़ा हो गया था, तो उसको जरा पहचान करने में थोड़ी देर लगी। तो बोले कि हाँ तुम वो तो आदमी नहीं, फलाना हाँ मैं तो यही आदमी हूँ, तुम बाबू भाई को नहीं, कहा मैं बाबू भाई हूँ, मैं बाबू भाई हूँ, मेरा खुद नहीं है तुम्हारे सामने का, डॉक्टर साहब अच्छी तरह देखिए मैं यही आदमी हूँ, मेरा खुद नहीं है तुम्हारे सामने, मेरे को बहुत अच्छा हो गया था। उस आदमी ने इस चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि एक फलाने फलाने महीने की सुबह में मेरे यहाँ एक भगवान पधारे, मेरे परमेश्वर पधारे, क्या उल्लेख अच्छा शब्द प्रयोग किया था, जिन्होंने मैंने ये प्रयोग दिखाया, मैंने ये प्रयोग किया और मेरी तबीयत कुछ इतने दिनों में इतना इतना ये गड़बड़ और कैसे लाभ निकले, कैसे भगवान ने सब वर्णन किया, और मैं अच्छा एक जीवन को देने वाला दे तो नहीं सकता, इसका आयुष है, लेकिन जहां जीवित रहने की कोई संभावना न हो, मृत्यु के मुख में पड़ा हो, उसी काल में अगर वो बच जाता है तो उसको ये लगता है कि ये मनुष्य नहीं है, ये कोई भगवान है जो मुझे बता दिया। ये अनुभव की प्रैक्टिकल साइड है इस विषय की। अब बताइए कि इस संसार में अनंत जन्म मरण करने वाला, अनंत मृत्यु का भय से जो भयान्वित हुआ है, जो भव भय के भ्रमण से डरता है, ऐसी पात्रता है, ये भी पात्रता का एक लक्षण है, भव भ्रमण से डरना ये पात्रता का लक्षण है, उसको अनंत मृत्यु अपने देखती है, जो बार बार मरूंगा और कैसे बुरी तरह मरूंगा, जैसे एक्सीडेंट देखते हैं, एक आदमी की रोटली हो जाए, ऐसा नीचे आ जाए इंजन में यंत्र में, ऐसे जैसे ऐसे हो जाए, इतना बुरी तरह मरता है, तीन प्रकार के मृत्यु होते हैं बुरी से, भव भ्रमण में तो सब होने वाला है, इससे कोई बचाने वाला, अनंत जन्म भव भ्रमण से छुटा छोड़ने के उपाय बताने वाला, छुटने का उपाय बताने वाला, कोई सत्पुरुष मिल जाता है तो उसको ये दिखता है कि ये कोई मानवी नहीं है, ये सत्पुरुष कोई मनुष्य नहीं है, मेरे लिए तो ये प्रकट परमात्मा है। क्या दिखता है? मेरे लिए तो प्रकट परमात्मा है, इन्होंने मुझे बचा लिया। जो काम सर्वज्ञ से निमित्त सर्वज्ञ के निमित्त से होने वाला था यही काम सत्पुरुष के निमित्त से हुआ। डूबता बचने वाला स्टीमर से बचे या पटिया से बचे? बचने वाला तो 100% पूरा का पूरा बच जाता है, तो कोई अधूरा नहीं बचता। स्टीमर आई तो पूरा बचा, पर पटिया मिला तो होती है, आती है। ऐसे प्रसंग बनने पर ऐसा ये होता है, इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण नहीं, बहुत स्पष्ट कथन श्रीमती के शब्दों में अपन पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल ठीक यही बात है। ये पत्र है 254 नंबर का, 254। ये पत्र है अनुवाद के मुहूर्तों के मंडल पर, और उसमें कहते हैं कि मनुष्य जीव को मनुष्य की दशा में इस भूमिका में जो बोध बीज योग्य भूमिका हुई है, ऐसी भूमिका में इस भूमिका के प्रतिबंधक अवरोधक तीन कारण होते हैं। एक कारण तो इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा सुख बुद्धि, थोड़ी भी सुख बुद्धि यह मनुष्य की योग्यता को प्रतिबंधक कारण है। दूसरा है परम विनय, सत्पुरुष के प्रति प्रति परम विनय की कमी। विनय होता है लेकिन परम विनय नहीं आता, इसकी कमी, ये भी योग्यता को प्रतिबंधक कारण है। और तीसरा कारण दिया है पदार्थ का अनिर्णय, वस्तु के स्वरूप का सेवा करने की उसका पहचान नहीं होती, तो आगे बढ़कर अनुभव में और हमको छेड़ने की अवस्था में नहीं पहुंचता। तो दूसरा जो कारण है परम विनय की कमी, विनय तो होता है मनुष्य को, जिसको सत्पुरुष के प्रति विनय ही नहीं होता है इसकी चर्चा ध्यान कर रहे हैं। ये तो बेचारा विराधक परिणामों में आ गया और इसका क्या होगा, ये तो गया पाठ। लेकिन जो मनुष्य विनय में आया है उसको कमी हो, वो कमी है, वो प्रतिबंध कारण है। इस विषय में वो बयान दे रहे हैं। क्या लिखते हैं कि सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, जो प्रश्न में शब्द है श्री कृष्ण का एक प्रयोग क्या है कि सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, इसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। क्या शब्द ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है, और यह बुद्धि परम दीनता को सूचित है, परम विनय को सूचित करती है, जिससे सर्व प्राणियों के प्रति अपना दासत्व माना जाता है। ये इसका दूसरा लक्षण है, परम विनय का बारे में दूसरा लक्षण है कि किसी भी जीव पर जीव के प्रति तिरस्कार की बुद्धि नहीं होती। ऐसा ही इसका दूसरा लक्षण है। और परम योग्यता की प्राप्ति होती है, यह परम दीक्षा जब तक आवरित रही है तब तक जीव की योग्यता प्रतिबंध युक्त होती है। इसके मनुष्य जीव की योग्यता प्रतिबंध युक्त होती है। ये बात 200 में आई है, पत्र तो लंबा छोड़ा है, लेकिन जो प्रश्न का उत्तर रूप जो है बात तो वहां आई है। और एक दूसरी बात इससे भी बढ़िया जो भी आई है, इससे भी बढ़िया जो बात है ये आई है इस ग्रंथ के 223 नंबर के पत्र है। दोनों पत्र सम्यक दर्शन के बाद 24 साल की उम्र में लिखे गए हैं। मैंने ज्ञान अवस्था में लिखे गए हैं, अज्ञान अवस्था में नहीं लिखा है, ये स्पष्ट कर दें। परमात्मा और आत्मा का एक रूप हो जाना यह पराभक्ति की आखिरी हद है। ये परमेश्वर बुद्धि है, ये भक्ति का दूसरा नाम है। सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि, ये सत्पुरुष प्रति के भक्ति का दूसरा नाम है, दूसरा शब्द है। दुनिया ये प्रकरण चला है इस पत्र में कि परमात्मा और आत्मा का एक रूप हो जाना यह पराभक्ति की यानी उत्कृष्ट भक्ति की एक चरम सीमा है। आप देख एक यही लय रहना, लय से लगन से ऐसा ही परिणाम, लययुक्त रहना, ये पराभक्ति है, ये उत्कृष्ट भक्ति है। अन्य मत के श्रीमद् भागवत का एक ग्रंथ है वैष्णव का, इसमें इसका दृष्टांत आया है। श्री कृष्णचंद्र के प्रति गोपांगनाओं की ऐसी भक्ति थी, तो वहां जो गोपांगनाएं थी श्रीमद् जी ने उसको महात्मा शब्द का विशेषण बनाया है। प्रकरण चल रहा है कि महात्मा परम महात्मा कौन, हम असाधारण महात्मा नहीं थी, परम महात्मा गोपांगनाएं महात्मा वासुदेव की भक्ति में इसी प्रकार से रही थी। परमात्मा को निरंजन और निर्देह रूप से चिंतन करने पर यह लय आना विकट है, ऐसी लय आना निरंजन निराकार परमात्मा को चिंतन में लेकर के ऐसी भक्ति होना विकट है। इसलिए जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है ऐसे देहधारी परमात्मा, क्या कहा,
देहधारी परमात्मा।
अच्छा, अब अभी ये जो शब्द है सब बहुत धार्मिक है और समझने लायक है। इसलिए जिसे परमात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है अंदर में अपने परम स्वरूप का, परमेश्वर पद का, जीव पद का, निज पद का साक्षात्कार हुआ है, ऐसे परमात्मा कौन साक्षात्कार होने वाला वो कौन है, वो भी देहधारी परमात्मा है, उस प्राप्ति का परम कारण है, उसके प्रति पराभक्ति होनी चाहिए। उस ज्ञानी पुरुष के, ऐसे सतपुरुष के सर्व चारित्र में एक भाव का लक्ष्य होने से, उसके प्रति अनहद भक्ति होने से, ऐसा कहते हैं, उसके चारित्र में कोई दोष नजर नहीं आते, ऐसा एक भाव हो जाता है। जैसे पक्ष करने वाला क्या करता है, तो अपने लड़के का पक्ष करता है, अपने भाई का पक्ष करता है, जिसके प्रति प्रेम हो, जिसके प्रति नम्र हो, इसका पक्ष करता है, तो इसका कोई दोष कोई बताए नहीं तो उसका भी बचाव कर देता है, दोष को दोष के रूप में स्वीकार नहीं करता, उसका बचाव करता है, सही रूप से ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ तो कहते हैं कि जिस ज्ञानी से तैरने का निमित्त बनता है, संसार को छोड़ाने का कारण बनता है, उसके सर्व चारित्र में, उसके अंतर्गत सर्व प्रसंग में ऐक्य भाव में ऐसा प्रेम रहता है, ऐसा प्रेम रहता है कि ऐसा लक्ष्य होने से उसके हृदय में विराजमान परमात्मा का ऐक्य भाव होता है। क्या कहें, कहना बहुत मार्मिक बात है कि सत्पुरुष के हृदय में कौन विराजमान है, के उन्हीं को मान मान सकते। जैने जानता जिसके हृदय को जानते हुए हमेशा की स्तुति में क्या आता है, जाने तुझे हृदय ज्ञान होता जानने में आता है। परमात्मा को जानने से ज्ञानियों का हृदय जानने में आता है। क्यों? ये परमात्मा ज्ञानियों के हृदय में विराजमान है और ज्ञानियों को ऐसे गहराई से जानने से क्या जानने में आता है कि इनका हृदय जानने में आता है कि मैं करमचंद जी को अच्छी तरह जानता हूँ, इसका हृदय क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जो कहते हो वो समझते नहीं, इसके हृदय को नहीं समझते, ऐसे कहते कहीं कहते हैं। ऐसे ज्ञानियों के सर्व चारित्र में इसका हृदय है, इसके हृदय की धड़कन है और उसकी इसके सर्व चारित्र होती है। तो इसको सर्व चारित्र को एक भाव से देखने से उसके हृदय में जो विराजमान परमात्मा है उसमें एक भाव होता है, इसकी पहचान होती है। तो अरे